हमने अपनी तारीख पूरी पढ़ी नहीं, खोली नहीं। आप आगे जाके देखें, गज़वे खंदक का मौका। इन्होंने बैठ के सोचा, यहूद थे मदीना में, तीन कबीले थे उनके, मुसलमानों के अजली और अब्दी दुश्मन थे। मक्का में मुशरिकीन थे जो पहले ही घर से निकाल चुके थे, मुसलमानों के घर माल उनकी छोड़ी हुई जायदादों पे कब्जे कर चुके थे। मदीना में आने के बाद कुछ मुनाफिक भी मिल गए जो हमेशा ही अच्छे दिनों के इंतज़ार में होते हैं कि देखें ऊंट किस करवट बैठता है। इन तीनों ने बैठ के मीटिंग की कि क्या है, कभी हम यहूद हमला करते हैं, कभी हम काफिर करते हैं, कभी कोई कबीला करता है, चलो ऐसा करते हैं, सारे मिलके एक दफ़ा ही हमला करते हैं। कुछ लोग उनके आ जाएं, कुछ हमारे, जब सारा अरब ही खिलाफ होगा तो ये चंद मुट्ठी भर मुसलमान करेंगे क्या? और आज इनका काम ख़त्म करते हैं, बाद में निमट लेंगे कौन बड़ा और कौन छोटा। और ये ऐसी बात है जिसको आज के दौर के हिसाब से अगर मैं समझाने के लिए सिर्फ बात करूं, जैसे आज की सारी इस्लाम दुश्मन ताकतें मिल जाएं, मिली हुई हैं लेकिन और मिल जाएं, और किसी एक मुल्क को हदफ बना लें कि आओ चलो सारे पहले इसका तो काम ख़त्म करें। वही कैफियत थी। अब ज़रा एक लम्हे के लिए सोचिए, अल्लाह का नबी, एक कायद, एक लीडर, चंद साल हुए मदीना की रियासत को बने हुए, दुनिया में इस नक्शे पे, इस ग्लोब पे पहली इस्लामी रियासत मदीना है, पहला इस्लामी मुल्क इस मदीना है जिस जो इस्लाम के नाम पे कायम हुई और अल्लाह के नबी सल्लम उसके अमीर थे। 3 साल नहीं हुए, 4 साल नहीं हुए, आप ज़रा सोचें, 4 साल किसी मुल्क को आज़ाद हुए हुए हों तो क्या उसके रिसोर्सेज होते हैं। अभी तो सरवाइव करने की कैफियत है और ख़बर आ गई है कि चारों तरफ से लोग आपके लिए आ गए। मैं सिर्फ आपको ये हालात क्यों बताती हूँ कि तकाबल करें, कॉम्प्रोमाइज़ की गुंजाइश थी कि नहीं, झुकने की गुंजाइश थी कि नहीं, सरेंडर करना चाहते थे कि नहीं, असलहे की भीख मांग सकते के थे कि नहीं, सब कुछ कर सकते थे। उनको भी जानें प्यारी थी, उनको भी माल प्यारे थे, उनकी भी बच्चे बीवियाँ थे, उनको भी घरों और अपने प्यार था। अल्लाह के नबी ने नो कॉम्प्रोमाइज़ कहा, हम मुकाबला करेंगे, करें क्या? साथियों को बिठाया, मशवरा किया, क्या करें, क्योंकि हम तो हैं ही थोड़े। एक तो ऐसे ना कि चले दो बराबर की चोट के हैं, कोई एक लड़ेगा दूसरा मर जाएगा, लेकिन यहाँ तो मामला ऐसे है जैसे चींटी और हाथी का मुकाबला। फिर ऐसे वक्त में अल्लाह सबब पैदा करता है, और अल्लाह हर दौर में सबब पैदा करता है। उस दौर में सलमान फारसी थे, आज भी कोई होंगे जिनको अल्लाह समझ दे देता है। कहने लगे अल्लाह के नबी सल्लम, हम अपने मुल्क में दुश्मनों से दिफा कैसे करते थे कि दुश्मन के और अपने बीच में एक खंदक खोद देते थे, जैसे ज़मीन को डक किया और इतना बड़ा हला डाल देते हैं कि जो कोई इंसान पार नहीं कर सकता, खाई जैसे होती है। तो उससे क्या होता है कि हम अंदर होंगे, मदीना की सिचुएशन ऐसी थी कि पीछे पहाड़ है और आगे सिर्फ एक समझे कि सेमी सर्कल आप कह लें, इतनी जगह जहाँ से कोई भी एंटर हो सकता है। तो क्यों ना हम सारे मिलके एक खंदक खोद लें, और मक्का वाले या वो सारे हमला करेंगे तो बाहर से आएंगे, हम अंदर हैं, वो अंदर आ ही नहीं सकेंगे। हम यहाँ कुछ लोगों को थोड़े थोड़े फासले पे बिठा देंगे जो तीर लेके बैठ जाएंगे, अगर बिलफर्ज किसी ने खंदक पार करने की कोशिश भी की तो तीर मार देंगे, बात ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह के नबी सल्लम को ये राय बड़ी पसंद आई। यहाँ अल्लाह के नबी सल्लम की मामला फहमी भी देखिए, एक आम सहाबी, अरबी भी नहीं है, उनकी राय पे कहा ठीक है, मानते हैं, लेकिन अब अगला मरहला करें क्या? खंदक खोदना कोई आसान काम है? पहाड़ों को काटना, मिट्टी को काटना, ना उनके पास टूल्स ना हथियार। लेकिन याद रखिए, जब इंसान का अज़म बुलंद होता है ना, जो हो ज़ौके यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। कम्युनिटी वर्क, इज्तमाईयत की बेहतरीन मिसाल, आज के मुसलमान के लिए बेहतरीन सबक, जुड़ जाओ, इज्तमाईयत पे आ जाओ, एक हो जाओ। छोटी छोटी टोलियों की बजाय एक जगह बनोगे, अकेले रहोगे तो एक लकड़ी हो, मिल जाओगे तो एक गट्ठड़ बन जाओगे। वही हुआ। कहा अल्लाह के नबी, घबराते क्यों हैं, हम सब खंदक खोदेंगे, हर एक के हिस्से, एक ख़ास तादाद जो इस वक्त मुझे याद नहीं, गालिबन 10 10 हाथ, हाथ जैसे वाले होते हैं ना, उंगली से लेके कोहनी का, यानी 10 फुट कह लें या इससे कुछ ज़्यादा, इतनी इतनी जगह हर सहाबी के हिस्से में आई कि हर एक ने खंदक खोदनी है। अल्लाह के नबी सल्लम चाहते तो खुद ना करते, लेकिन आप उसमें शामिल थे। एक कायद है जो एक वक्त में जरनेल बन जाता है तो दूसरे वक्त में वो मजदूर भी बन जाता है। भूख, प्यास, सर्दी, पेट में दो दो पत्थर बांधे हुए और इस इस्लाम का दिफा के लिए खंदक खुदी। कर सकते थे कॉम्प्रोमाइज़, भीख मांग सकते थे, काफिर तो खुशी खुशी मदद देता। वो तो चाहते ही है कि मुझसे मदद मांगो तो सही, हम तो खुशी से दे के आएंगे, बस अपर हैंड हमारा रहे। कहा नहीं, ये नहीं होगा, इस्लाम का मिजाज आज हमने समझा ही नहीं। कहा नहीं, हम खुद खोलेंगे। पेट पे पत्थर बांधे और खंदक खुदी। खंदक के दौरान भी क्या वाकया था है? एक जगह ऐसी आई कि एक सख्त ज़मीन थी, पत्थर था, सारे सहाबा ने कोशिश की, उनसे वो पत्थर नहीं टूटा। अल्लाह के नबी सल्लम के पास आ गए। क्या अल्लाह के नबी, ये नहीं खुदरा? कहा तुम पीछे हटो, इसको मैं तोड़ूंगा। और आपने अपनी कुदाल लगाई, एक दफ़ा लगाने की देर थी, पत्थर का एक टुकड़ा ऐसे निकला जैसे मूसल की धार से चीज़ गिरती है। आपने फरमाया मुझे रोम की चाबियाँ दिखाई गई। दूसरी दफ़ा हमारा मुझे फारस की चाबियाँ दिखाई गई। ज़रा सोचिए, पेट पे पत्थर बंधे हुए हैं, तन पे कपड़े नहीं। लोग कहते हैं अल्लाह के नबी का पेट मुबारक गीली मट्टी से लुथड़ा हुआ था, और आप क्या कह रहे हैं कि मुझे उस वक्त की बड़ी बड़ी ताकतों की चाबियाँ दिखाई जा रही हैं। ये होता है सच्चा ईमान। जितनी मुश्किल में हो, जितनी परेशानी में हो, लेकिन निगाहें बुलंद होती हैं। ऐसे ही लीडर्स के लिए अल्लामा इकबाल ने कहा था कि निगाह बुलंद, सुखन दिल नवाज, जाँ पुरसोस, यही है रख्त सफ़र मीरे कारवां के लिए। अल्लाह आज भी ऐसे लीडर दे दे जिनकी निगाहें ज़मीन पे लगी हुई नहीं, आसमानों की वसअतों को देखने वाली, बुलंदियों और रफ़तों की बात करने वालियाँ। आपने कहा देखना मुल्क फारस फतह होगा, देखना रोम फतह होगा। मुनाफिक ठट्ठे लगा रहे हैं, देखो पेट पे कपड़े नहीं हैं और कह रहे हैं कि हम रोम और फारस को फतह करेंगे। लेकिन आप जाके पढ़ के देखिएगा खंदक की जंग में क्या हुआ। मुसलमान अंदर हैं, काफिर बाहर है। उनको उम्मीद भी नहीं थी कि ये क्या होगा, वो तो खुशी खुशी आ रहे थे ना। मक्का से मदीना का रास्ता आखिर 8 दिन लगते थे। आ गए, आगे देखा तो ये क्या हुआ। अब परेशान है, हाथ पाँव मल रहे हैं, वहाँ डेरे डाल लिए। अब बताइए, इतना लश्कर लेके आना तो आसान बात है, उनका खाना, उनका पीना, ज़ाहिर तैयारी होगी ना। आप सफ़र में निकलते हैं, आप कितना कुछ सामान साथ ले आते हैं। एक वक्त आता है कि आपको ज़रूरत पड़ती है कि अब आपके पास कुछ और हो। अब वो वहाँ बैठे हैं और मुसलमान अंदर महफूज घरों में। वो कहते हैं ना हींग लगे ना फटकड़ी, और रंग भी चोखा है। सिर्फ एक ही ख़तरा था अंदर, बनू कुरैज़ा से। उनके कबीले में, उनके जो किले थे वो मदीना के अंदर थे, सिर्फ उनसे ख़तरा था। अल्लाह के नबी सल्लम की आप देखिए कमेंट देखिए, आपने उनसे जाके समझौता किया, और किया बता। जब मदीना में आए तो यहूद मदीना के से मीसाक किया था कि देखो अगर कोई बाहर से आएगा तो तुमने मुसलमानों का हाथ साथ देना है। क्योंकि जब मदीना आज़ाद हुआ ना, हिजरत के बाद जब मदीना में एक मुल्क की हैसियत हुई, तो यहूद असल में ज़िम्मी थे, जो जिज़िया दे के रहते, नॉन मुस्लिम, जैसे अकलियत मिनॉरिटीज़ थी, और मुसलमानों का अपर हैंड था। कहा देखो रहना है तो ठीक तरह रहना, ये शर्तें, पूरी शर्तें पढ़िएगा जाके किताब में, ये नहीं करोगे, ये नहीं करोगे, ये नहीं करोगे। कहा अगर किसी ने गद्दारी की तो उससे जंग होगी, लेकिन जिनकी सांप है ना उसकी आदत है डसने की। इस मौके पे बनू कुरैज़ा ने गद्दारी की, धोखा दिया। बाहर से कुछ नहीं हुआ, वो बाहर से आ ही नहीं सके, उन्होंने इनसे पैगाम रसानी कुछ की कि तुम अंदर से ज़रा मुसलमानों को तकलीफ़ दो। बहरहाल खंदक में मुसलमान फतह याब हो गए, कुछ नहीं कर सके। एक दो काफिरों ने कोशिश की खंदक पार करने की, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनके साथ मिकदाद बिन अस्वद और गालिबन एक दो सहाबी, उन्होंने तीर मारे, भाग गए, कोई जंग नहीं हुई और मुसलमान की फतह। और ये वो वक्त था, सूरह अहज़ाब में जाके पढ़िएगा इसकी आयतें। अल्लाह ताला कहते हैं इतनी खौफ, इतनी दहशत का आलम था कि तुम्हारे दिल खलक में आ चुके थे, कुलूबुल अदल खनाजिर, जैसे धक धक की आवाज़ें तुम्हारे अपने कानों से सुनाई देती थी। अल्लाह ने ऐसी आंधी चलाई कि काफिरों की हांडियाँ उलट गईं, उनके खैमे उखड़ के चले गए। ऐसी ऐसी अल्लाह की मदद कि मेरा दिल चाहता है कि मैं आपको एक एक आयत कुरान की साथ लेके बताऊं कि अल्लाह ने मदद कैसे की। अल्लाह की तो मदद ईमान वालों के साथ है। बहुत सारी जगह आयतें हैं ऐसी जो इंशाल्लाह आपको कोट करवाऊंगी कि अल्लाह कहता है मेरे तो ये ज़िम्मे है कि मैं ईमान वालों की मदद करता हूँ। हम इसी तरह मदद करते हैं, ऐसे ही करते हैं। और कि वो वापस पलट गए, मुसलमान कामयाब हो गए। अब 1 महीने की सरतोड़ जंग थी, मुसलमान थके हुए भी थे। जब काफिर गए, अल्लाह के नबी सल्लम अपने गुसल खाने में है, हथियार उतारे, जिब्राइल आ गए। कहा जिब्राइल ने फरमाया, अल्लाह के नबी, आपने हथियार क्यों उतार दिए? अभी फरिश्तों ने तो नहीं उतारे। क्यों भाई, क्या हुआ? कहा, चले अब बनू कुरैज़ा को मज़ा चखाया जाएगा। अभी उन्होंने गद्दारी की। अब देखिए कि इस्लाम कमिटमेंट को कितना मानता है। वादा खिलाफी किसी दौर में बर्दाश्त नहीं हुई। कहा अब इन्होंने खयानत की, इन्होंने गद्दारी की, ऐसे वक्त में मुसलमानों से गद्दारी करना तो उनकी जान लेने के बराबर थी। अल्लाह का हुक्म है, अब जाके बनू कुरैज़ा को दिखाया जाए। कहा ठीक है, किसी ने कुछ नहीं कहा। क्या मुसीबत है, एक जंग ख़त्म नहीं हुई, दूसरी क्या करें? नहीं, चल पड़ते थे। एक पैगाम भेजा अल्लाह के नबी सल्लम ने सहाबा के नाम, एक लेटर, और वो क्या था? तुम में से कोई ऐसा ना हो कि वो असर की नमाज तक बनू कुरैज़ा के किलों में ना पहुंच जाए। पैगाम दिया कि असर की नमाज तक वहां पहुंचना है। नो ऑब्जेक्शन, नथिंग, नो क्वेश्चन आंसर, क्या मसला है, वजह क्या, पहले साबित करें। नहीं, सहाबा कराम घर से निकले, और इतना ही फासला था कि बंदा 7-8 घंटे में उनके किलों तक पहुंच जाए। कुछ लोग निकले, रास्ते में असर का वक्त हो गया, उन्होंने नमाज पढ़ ली। क्यों, क्या भाई तुम क्यों पढ़ रहे हो? इसलिए कि वक्त हो गया, नमाज का वक्त आ गया तो नमाज पढ़नी है। कुछ ने कहा हम तो नहीं पढ़ेंगे। भाई क्यों नहीं पढ़ोगे? इसलिए कि अल्लाह के नबी ने कह दिया कि तुमने नमाज पढ़नी है, तुमने कुरैज़ा के कबीलों किलों तक पढ़नी है, तो हम आपका हुक्म नहीं टाल सकते। लेट होती है तो होने दें, हम वहां जाके पढ़ेंगे। अब देखिए इख्तलाफ हो गया ना। उन्होंने कहा ठीक है, जिन्होंने पढ़नी थी उन्होंने पढ़ ली, जिन्होंने नहीं पढ़नी थी उन्होंने वहां जाके कज़ा पढ़ी। और सफर में तो वैसे भी आप दोनों नमाजें मिला सकते हैं, रुख्सत हो गई। जब अल्लाह के नबी सल्लम वहां पहुंचे तो लोगों ने ये मसला सामने रखा। देखें, इन्होंने पढ़ ली, उन्होंने नहीं पढ़ी। आपने ना उनको बुरा कहा ना इनको बुरा कहा। आज हमारा हाल क्या है, छोटी छोटी बातों पर तलवारें निकाल लेते हैं, अपनी मस्जिदों, अपने मदरसों पे गोलियां चलाते हैं। बर्दाश्त नहीं, हमारे अंदर मामला फहमी नहीं। ठीक है, उन्होंने एक और रंग से देखा दीन को, उन्होंने देखा कि नमाज फ़र्ज़ है, इन्होंने अल्लाह के नबी सल्लम के हुक्म को अहमियत दी। नीयत तो किसी की बुरी नहीं थी, फतूर तो किसी के नहीं था। अब जब वहाँ गए, बनू कुरैज़ा को पता चल गया कि ये आज आ गए, हमें अपने किलों में बंद हो गए, किलों के अंदर जाके अंदर से ताले लगा लिए, कभी खुल के नहीं आए सामने, पीछे ही रहे। क्या क्या वाक़े हैं, इतनी खूबसूरत कहानी है। साद बिन माज का नाम आपने सुना होगा। गज़वे अहज़ाब में उनको एक तीर लगा ये कलाई पे, तो उससे उनका खून जारी हो गया था। इन्होंने अल्लाह ताला से एक दुआ की कि अल्लाह मुझे मौत ना देना जब तक मैं बनू कुरैज़ा का अंजाम ना देख लूँ। इतना ग्रज था लोगों के दिलों में इस्लाम दुश्मनों के बारे में कि इन्होंने खयानत की है, इन्होंने गद्दारी की है, अभी मुझे मारना ना जब तक मैं इनका अंजाम ना देखूँ। अल्लाह का हुक्म देखे कि उनका खून रुक गया, ज़ख़म वैसे ही मंदमिल हो गया। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया और नबी सल्लम ने इस चीज़ का ऐलान किया कि बनू कुरैज़ा के बारे में वही फ़ैसला होगा जो हज़रत साद बिन मास कहेंगे, क्योंकि इनकी उनसे दोस्ती भी थी, उनके किले कबीले के लोगों में से थे। खैर, इनको बुलाया गया कि माज़ आप बताइए इनके साथ, यानी गिव अप कर लिया उन्होंने, हैंड्स अप कर दिए किले वालों ने कि आप हमारे बारे में जो फ़ैसला करें हम तैयार हैं, लेकिन हम आपका सामना नहीं कर सकते, हम मुकाबला नहीं करेंगे। साद बिन माज से पूछा कि आपका क्या ख्याल है, इन लोगों के साथ क्या किया जाए? तो इन्होंने कहा कि मेरा तो फैसला ये है कि इनके मर्द जो जंग के काबिल हैं, जो मुसलमानों के साथ यानी लड़ने की नीयत से हैं, उनको कत्ल किया जाए और बच्चों और बूढ़ों को कैद कर दिया जाए, उनको ना मारा जाए। अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया कि साथ आपका जो फैसला है वो साथ में आसमान पे अर्श पे अल्लाह का भी वही फैसला है। वेरिफिकेशन कर दी, यही किया गया। उनका इंजाम पूरा हुआ, उनको लगाया, उनके किलों में से माल मुसलमानों को मिला। घर आए, अल्लाह के नबी सल्लम ने देखा कि साद बिन मास के खेमे के अंदर से खून की धारियां निकल रही हैं। जाके देखा तो उनका जख्म दोबारा खुल गया हुआ था और उसी से उनकी जान निकली। आपने फरमाया कि साद की मौत से अल्लाह का अर्श हिला। और इन्हीं के बारे में एक रिवायत भी आती है कि अगर कब्र ने किसी को ना भेंचा होता, यानी क्रश ना किया होता, तो वो साद बिन मास होते, लेकिन कब्र ने उनको भी भेंचा। इतनी सख्त घाटियां आगे आने वाली हैं। तो बात क्या थी कि अल्लाह ने हर दौर में मुसलमानों की मदद की। आपकी सीरत को पढ़ के देखिए, हर गज़वे में मुसलमानों के पास असबाब थोड़े थे, ताकत थोड़ी थी, हथियार नहीं थे, लेकिन मदद उनकी होती रही। आखिर क्यों, वजह क्या थी? अज़म, हौसले, ईमान, तवक्कुल, इतात, वो सारे मोती उनके पास थे जो अल्लाह की मदद को बुलाती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की आखिरी बड़ी जंग तबूक, अगर इसका मैं ज़िक्र ना करूँ तो ज़्यादती होगी, क्योंकि तबूक में मुकाबला था रोमन से, क्रिश्चियन, उस वक्त की सुपर पावर रोमन थे। मुसलमानों के पास ख़बरें पहुंची कि वो बॉर्डर्स के ऊपर फ़ौजें जमा कर रहे हैं, और इर्द गिर्द के वहाँ जो छोटे छोटे काफिर कबीले थे उनको भी साथ मिला लिया, और लाखों की तादाद में उन्होंने फ़ौज जमा की हुई है कि मुसलमानों पे हमला करें। क्यों? दूसरा मुल्क था, उन्होंने ये सोचा कि ये अरब के अंदर तो अपनी हुकूमत बनाते आ रहे हैं, अब अगला हदफ हम ही होंगे। लेकिन मुसलमान डरने वाले कब थे? मैं चाहूँगी कि अगर आपको मुश्किल ना लगे ना, तो अपनी पहली फुर्सत में सूरत तौबा का तर्जमा पढ़ें जाके, पूरा गज़वे तबूक का नक्शा, लाखों की तादाद में हिरकल की के हुक्म पे लोग फौजें जमा कर रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ, और मुसलमान जो पहले ही जंगों के सताए हुए, जंगे यरमूक हुई, जंगे मौता हुई, मुसलमानों के कितने लोग मारे गए उसमें, इसके बावजूद आपने कहा कि हम तैयारी करेंगे। मुल्क रोम कितना दूर है मदीना से? 1 महीना लगता था ऊँटों पे, और मुसलमानों के पास कितने ऊँट थे? गिनती के 18, यानी 18 सहाबियों के हिस्से में एक ऊँट आया, यानी 17 पैदल चलेंगे, बारी 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 बारी, फिर पहले की बारी आएगी। एक ऊँट पे होता तो 17 पैदल चलते, थोड़ा सा चलता फिर दूसरा बैठता तो बाकी 17, फिर तीसरा बैठता चलते, कहीं 18 के बाद पहले की बारी आती। और गुरबत का क्या हाल था? एक खजूर, अमीरे लश्कर एक खजूर देता था एक दिन में एक सहाबी को, और वो कहते हैं हम खाते खाते कि चबाते चबाते उसकी गुठली भी छिबल जाते। बाद जगह आते लोगों ने कहा कि एक खजूर से क्या बनता होगा, कहा हाँ, ये उस दिन पता चला जब वो खजूर भी ना रही, फिर पता चला एक खजूर भी क्या होती है, एक वक्त ऐसा आया कि खजूरें भी खाता हूँ। फिर वो ऊँट जो पहले ही थोड़े थे, उनमें से भी किसी कुछ काटने पड़े कि जिनको खाएं, और ये वो जंग थी कि जिसमें लोगों ने ऊँटों की ओजड़ियों के अंदर का पानी भी पिया। शायद हम नाक पे रुमाल रख लें ये लफ्ज़ सुनते हुए, उसका पानी पिया, बबोल के पत्ते खाए। सहाबे कराम कहते हैं जब हम कज़ाए हाजत के लिए जाते तो हमें बकरियों की तरह मैंगनियाँ जिस्म से निकलती, क्योंकि जो बकरी खाती है वही ये खाते थे। ये इस्लाम आराम से नहीं पहुँचा, आज हमने तो इसका क्या हाल कर दिया, ये कुर्बानियों से पहुँचा, ये कमिटमेंट से पहुँचा। जैश-उल-उसरा उस जंग का नाम रखा गया, खड़ी फसलें थी, सख्त गर्मी के दिन थे, और हर एक का निकलना फ़र्ज़ था, फ़र्ज़े यानी किफ़ाया नहीं थी बल्कि फ़र्ज़ ऐन थी जंग। एक एक को कहा सब निकलो, सिर्फ औरतें, बच्चे और जो बूढ़े थे, हैंडीकैप्स। इसके बावजूद लोगों का हाल क्या था कि आते थे कि अल्लाह के नबी हम जाना चाहते हैं, लेकिन आप कहते थे सवारी नहीं, और वो रोते हुए आंखों से वापस जाते थे कि हम इस जिहाद के अजर से महरूम रह जाएंगे, हम नहीं करेंगे, हम नहीं जा सकेंगे। और ये लश्कर गया, किसको ढाने जा रहे? मुनाफिक हंसते थे, कहते थे देखो ये मुट्ठी भर खजूरें देने वाले रूमियों को फतह करने जा रहे हैं, उनके मुकाबले में लड़ेंगे। एक सहाबी ने जब ये पुकार सुनी कि इस्लाम को ज़रूरत है माल की, पास तो कुछ है नहीं, करीब ही किसी यहूदी का कुआं था, उसके उस पर गए, पूरा दिन कुआं चलाते रहे, और हर एक डोल पानी निकलने के बदले में एक खजूर मिली, और शाम भर मेहनत में एक मुट्ठी भर खजूरें छुपाते हुए लेके आए। कहा अल्लाह के नबी बस ये चंद मुट्ठी भर खजूरें हैं, मैं तो यही ला सका, मेरे पास था ही ये। मुनाफिकीन ने ठट्ठे उड़ाए, देखो खजूरों के साथ ये रूम फतह करने जा रहे हैं, और आपने वो इखलास से भरी हुई खजूरें, वो अच्छे जज्बात और वो गैरत वाले मुसलमान की हलाल की कमाई को उस बड़े ढेर पे फैला दिया। आपने कहा मुट्ठी भर खजूरें पूरे ढेर पे गालिब आ गईं। ये वो मौका था कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने पूरे घर का सामान ले आए, उनके बाप अबू कहाफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बूढ़े थे, तकरीबन नाबीना हो चुके थे। कहते हैं कि मैं देख रहा था कि अबू बकर घर की दीवारों को छटी छड़ी से मार मार के देख रहा है कि कोई चीज़ ऊपर तो नहीं लगी रह गई कि वो भी ले जाऊँ। कहा बेटा कुछ तो छोड़ जाओ, पीछे क्या छोड़ रहे हो? कहा अल्लाह और उसका रसूल, क्योंकि अगर आज ये दीन बच गया तो हम भी बच जाएंगे। हज़रत उमर बड़ी खुशी खुशी अपने घर का आधा सामान ला रहे हैं और दिल में सोचते हैं कि आज तो मैं ज़रूर ही अबू बकर पे सबकत पा जाऊँगा, आज मैं ज़्यादा नेकी करूँगा, अबू बकर से ज़्यादा मेरा मुकाम हो जाएगा। लेकिन जाके देखा तो आधे घर का सामान और अबू बकर पूरे घर का। कहने लगे आज के बाद मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी अबू बकर पे सबकत पाऊँ, ये हमेशा ही मुझसे आगे बढ़ जाते हैं। 9 दफ़ा या 7 दफ़ा हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह के नबी सल्लम की पुकार पे कि इस्लाम के लिए लाओ कुछ, तो खड़े होके कहा कि मैं 100 ऊँट कजामों के समेत अल्लाह के रास्ते में देता हूँ। 100 कैमल ऐसे हैं जैसे आज की 100 गाड़ियाँ, 100 गाड़ियाँ देता हूँ इस्लाम के रास्ते में। आपने फरमाया उस्मान फिल जन्ना, बैठ गए, खबर मिल गई। हम होते हैं तो जश्न मनाने चल पड़ते, जन्नती हो गए ग्रेजुएट, फन करते हैं। नहीं, दोबारा फिर कहा अब कौन है जो लाता है? आपने दोबारा कहा कि मैं 100 ऊँट और देता हूँ। 9 दफ़ा अल्लाह के नबी की ज़ुबान से सुना उस्मान फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना। इसके बाद भी चैन नहीं आता था। ये वही उस्मान है कि जिनका बायकॉट किया था बिलवाइयों ने, उनके दौरे हुकूमत को पढ़ के देखिए इस्लाम के रास्ते में कितने रोड़े आए कि इनके मुखालफों ने इन्हें इनके घर में बंद कर दिया, खाना पानी ख़त्म। सिर्फ इनकी बीवी नायला इनके पास थी, वो इनकी मदद करती थी, घर से बाहर भी कुछ नहीं आने जाने दे रहे थे। और आपको पता है कि उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भूखे प्यासे कुछ भी पास नहीं है, कुरान पढ़ते थे, रोज़ा रखते थे। एक दिन बीवी को कहते हैं कुछ खाने को है? बीवी ने कहा मैं देखती हूँ शायद कुछ हो। इतनी देर में हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला देखा नहीं, कहा नहीं मैंने रोज़े की नियत की हुई है, रोज़ा है, मैं बाद में खाऊंगा। और नकाहत की वजह से, कमज़ोरी की वजह से आँख लग गई। ख्वाब में अल्लाह के नबी सल्लम को देखते हैं और वो कहते हैं कि उस्मान आज का रोज़ा तुम हमारे साथ इफ्तार करोगे। आँख खुली, चेहरे पे खुशी के असरात हैं। कहा कि आज मैंने अल्लाह के नबी को ख्वाब में देखा और मुझे ये खुशखबरी मिली। अभी ये बातचीत हो रही है कि दुश्मनों ने घर का दरवाज़ा तोड़ा और उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पे तीर चलाए। जिस कुरान से पढ़ रहे थे उसी के ऊपर उनकी छींटे पड़ी। पहले सपारे का आखिरी सफ़ा, फसयकफीकहुमुल्लाह, पसंद करीब तुझे किफ़ायत करेगा अल्लाह इनसे, यानी अल्लाह तुम्हें इनसे बचा लेगा, उस पे उनके खून के धब्बे पड़े और शहीद हो गए। रिवायत में आता है 40 दिन के भूखे थे, नहीं झुक सकते थे, नहीं टूट सकते थे। किस बात की लड़ाई थी? वमा नकमू मिन्हुम इल्ला अन युमिनु बिल्लाहिल अज़ीज़िल हमीद। सिर्फ एक ही कसूर है मुसलमानों का हर दौर में, जब काफिर ने उसको मारा वो क्या, कहीं युमिनु बिल्ला, एक अल्लाह को मानते हो तुम? इस बात पे लड़ते हो कि अल्लाह को मानते हैं इसलिए तुम्हें बड़ा नहीं मानते, अल्लाह को मानते हैं, इस बात की लड़ाई लड़ते हो तो हम भी नहीं झुकेंगे। अल्लाह ताला ने ये इस्लाम कितनी मुशक्क़तों से पहुँचाया। अल्लाह की मदद आती है किन लोगों के साथ? जो बिकते नहीं, जो टूटते नहीं, जिनके अंदर इस्लाम की सच्चाई का यकीन होता है। हर दौर में मदद हुई। और अगर इससे पीछे भी आ जाएं और वापस हर दौर को देख लें, अल्लाह के नबी सल्लम के दौर में तकरीबन अरब के अंदर इस्लाम आ चुका था, पूरे अरब के अंदर। हज़रत अबू बकर सिद्दीक के 2 साल किस चीज़ की जंग थी? मुर्तद हो गए लोग, अल्लाह के नबी नहीं रहे, अब हमने क्या करना है, अब छोड़ो चलते हैं वापस। कुछ ने कहा हम ज़कात नहीं देते, क्या ज़रूरत है ज़कात देने की, ये तो जिज़िए की बहन लगती है, कहीं मुसलमा कसाब का फितना है। ये 2 साल में वो इस्लाम की जंग बग़ैर हथियारों के लड़ते रहे और उसके बाद सिर्फ 10 साल अबू बकर सिद्दीक के बाद उम्र फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत के, इन 10 सालों में रोम, ईरान, फारस, सीरिया, ये सारे इलाके मुसलमान हो गए सिर्फ 10 साल में। ये वो दौर है कि जिस दौर में बैतुल मक़दस, जो यूशे बिन नून मूसा अलैहिस्सलाम के बाद के दौर का फतह हुआ हुआ, फिर उसके बाद उमर फारूक के हाथों में मुसलमानों के पास आया। और जब बैतुल मक़दस की फतह के लिए जा रहे थे तो हाल क्या था कि गुलाम साथ है और एक ऊँट है। कुछ वक्त खुद ऊँट पे सवार होते तो गुलाम चलता, और फिर जब वो थकता तो उसको बिठाते, बारियां लेते, टर्न्स लेते कि तुम भी इंसान हो, ठीक है तुम गुलाम हो लेकिन तुम बराबर हो। और इत्तफाक देखिए कि जब बैतुल मक़दस में पहुंचे, लोग दीवारों पे खड़े हैं कि आज फाते बैतुल मक़दस को देखें। कौन है जो इतने सालों के बाद इस इलाके को फतह करने आया? और हाल क्या था कि उस वक्त उस गुलाम के ऊँट पे बैठने और उमर फारूक के साथ चलने की बारी थी। गुलाम हिचकिचाया, कहने लगा आप, मैं नीचे उतरता हूँ, आप बैठिए। वो तो पहचानते ही नहीं, कोई मीडिया तो था नहीं, कोई तस्वीरें कोई था ही नहीं कि वो पहले से जानते। कहा नहीं, तुम्हारी बारी है, तुम ऊँट पे रहोगे, मैं नीचे जाऊँगा। लोगों ने कहा कपड़े तो बदल लें, इतने बड़े बड़े वहाँ आए हुए हैं पादरी, इतने बड़े बड़े उनके अमीर लोग आपको चाबी दे रहे हैं, इकतदार की मुंतकली एक अच्छा खासा प्रोटोकॉल होता है। कहा जिन कपड़ों में अपने मालिक के सामने जाता हूँ उसी में जाऊँगा। और लोगों ने समझा कि गुलाम जो है वह उमर हैं और उमर जो है वो गुलाम है। उस वक़्त नारे अल्लाह अकबर नहीं लगा होगा जब लोगों ने देखा होगा कि ये है अमीर लश्कर, कि किसी कौम का सरदार उनका खादिम भी होता है। उस वक्त मुसलमानों के अमीर ऐश परस नहीं थे, उनकी ख्वाबगाहें, उनके घर, उनके बिस्तर पूरी पूरी बस्तियों के बराबर एक का घर नहीं था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से कलाम किया था और पूछा था कि अल्लाह अंत फिस समाई व नहनु फिल अर्थ, ए अल्लाह तू आसमान पे हम ज़मीन पे, कैसे पता चले तू हमसे खुश है कि नाराज़ है। मोहब्बत होती है ना तो फिक्र होता है कि राज़ी है कोई या नाराज़ है। तो अल्लाह ताला ने कहा था कि मूसा अगर किसी जगह तुम अच्छे हुक्मरानों को देखो तो ये मेरी उनके साथ रज़ामंदी की अलामत है, और अगर किसी जगह के हुक्मरान बुरे हैं तो मान लो कि मैं उस जगह के आवाम से नाराज़ हूँ, ये नाराज़गी की अलामत है कि अल्लाह ऐसे लोगों को मुसल्लत करता है हम पे। ये कोई सियासी बात नहीं है, ये मुसलमानों के उरूज और जवाल की कहानी है।